मेरे प्रिय आत्मीय साथियों नमस्कार। आज 14 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है, हो सकता है कि आपका यह विषय सुना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि इस विषय पर आपने बाकायदे ट्रेनिंग भी ली हुई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस विषय के बारे में आपकी उत्सुकता हो लेकिन अभी तक जानने को शायद बहुत कुछ न मिला हो। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विषय है बहुत ही अहम यानी कि महत्वपूर्ण। और मित्रों, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो हो जाएगा संप्रेषण की कला या संप्रेषणीय दक्षता। लेकिन यह जो विषय है ये कम्युनिकेशन स्किल के नाम से ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, या यूं कह लीजिए कि बोलने की कला, लिखने की कला, इस तरह से भी आप इसे कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में चूंकि बोलना भी शामिल हो जाता है लिखने के साथ साथ, या लिखना भी शामिल हो जाता है बोलने के साथ साथ, तो इसीलिए इसके लिए मैं यहां जो शब्द प्रयोग में लाऊंगा फ्रेंड्स, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल। अब आप देखें कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। मित्रों, कम्युनिकेशन स्किल का एक सीधा सा जो अर्थ है वह यह है, कम्युनिकेट करना, यानी कि जो भी बात मेरे दिमाग में है, जो भी भावना मेरे अंदर है, मैं अपनी उन विचारों को और अपने उन भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहा हूं, यानी कि मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। अब जब मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं तो उसके जितने भी तरीके हो सकते हैं, इनफैक्ट वो सारे के सारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। लेकिन आम तौर पर जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो सच पूछिए वो बोलने की कला तक सीमित हो जाती है कि कैसे बोलें। कैसे बोलें कि जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका मतलब भी होता है कि कैसे प्रभावशाली तरीके से बोलें, यानी कि जब हम बोलें तो सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट पड़े, वो हमसे प्रभावित हो जाए, हमारी बात को मानने लगे, हमारे पीछे पीछे चलने लगे, या यूं कह लीजिए कि जिसे हम लीडरशिप कहते हैं, नेतृत्व करना कहते हैं, उसका ये बहुत अनिवार्य अंश होता है, बहुत ही अनिवार्य अंग, कि यदि लीडर में बोलने की कला नहीं है तो शायद उसका लीडर बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप दुनिया के जितने भी महान लीडर्स हुए हैं उनकी जब जीवनियां पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि वो सब के सब बोलने में बहुत माहिर थे। मतलब इस मामले में तो हिटलर का कमाल ही नहीं है, मतलब हिटलर तो आप कह लीजिए कि 100 साल पहले के ही, 100 साल भी नहीं है बल्कि 80 साल पहले के ही व्यक्ति हुए हैं। और कहा जाता है कि जब वो बोलते थे तो लोग सम्मोहित हो जाते, हिप्नोटाइज हो जाते थे, और बिना सोचे विचारे वो हिटलर की बातों पर विश्वास करके और उनके पीछे चलना शुरू कर देते थे। इतना ज्यादा बोलने की उनके पास इफेक्टिव कला थी। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है मीन कैंप, उसमें उन्होंने इस बात की बड़ी चर्चा भी की है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होती है और वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते थे। भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। विवेकानंद के बोलने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा बताया जाता है कि प्रभावशाली था, वो भी लोगों सामने वाले को बिल्कुल सम्मोहित कर लेते थे। चर्चिल बहुत जबरदस्त तरीके से बात करते थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए हैं वाशिंगटन, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो तो जब किसी से कोई बातचीत करते थे या समझौता या संधि भी करना हो तो उनकी बात को टालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था, वो इतना ज्यादा अपने को प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट कर जाते थे। तो मित्रों, होता ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं तो जो बात अभी मैंने की है वो बड़े बड़े स्तर पर की है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेताओं की बात की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल नेताओं का गुण है, नेताओं के पास ही इसका होना जरूरी है। सच पूछे तो आप हम सबके पास ही इस ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी के साथ तो कम्युनिकेट करते ही है ना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने सीनियर और जूनियर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप ग्राहक के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप चलिए कुछ भी ये सब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने घर वालों के साथ अपने कम्युनिकेट करते हैं, तो इन सब के साथ भी हम बातचीत तो करते ही हैं, तो हमारी बातचीत कितने अच्छे तरीके से हम दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं फिर से आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। फिर से का मतलब है कि इससे पहले के भी कई लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, इसलिए मैं यहां भी उपयोग जिस शब्द का उपयोग कर रहा हूं वो है फिर से। और मेरा प्रश्न ये है कि जब भी आप, दोनों तरफ से सोचिए कि जब भी आप किसी से अपनी बात कहते हैं तो क्या उसे ज्यों का त्यों समझ लेता है? आप देखेंगे कि आप कहते कुछ हैं लेकिन उसके समझने में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कुछ गलती हो जाती है, या आप कहना कुछ चाह रहे हैं वो समझ कुछ लेता है, हालांकि आपने कहा वही है जो आप कहना चाह रहे थे, आपने के कहने में कोई फर्क नहीं रहा है लेकिन उसके समझने में फर्क रह गया है। कभी इसके बिल्कुल उल्टा भी हुआ है कि दूसरे ने कुछ कहा आपसे और आपने अच्छे से सुना और आपको कोई डाउट नहीं है कि मैंने सुना कि नहीं, आपको यह भी डाउट नहीं है कि मैंने समझा कि नहीं, आपको पूरी तरह से इस बात पर भरोसा है कि नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा है मैंने बिल्कुल वैसा ही सुना है और जैसा उन्होंने कहा था वैसा मैंने कर दिया। लेकिन जब आप उनको बताते हैं तो कहते कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, तो अब लगेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं आपने ऐसा नहीं कहा, तो उनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मुझ पर ब्लेम कर रहा है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे संकट खड़े होते हैं कम्युनिकेशन के, ये छोटी चीज नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब मैं अपनी बात दूसरों तक एकदम ज्यों का त्यों स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंचा पाऊंगा तो मैं दूसरों से काम कैसे कराऊंगा, और जब मैं दूसरों की बातों को समझ नहीं पाऊंगा तो करूंगा कैसे? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि केवल नेता ही इसे अपनाएं, नेता ही इस पर काम करें, हम सबके लिए जरूरी होता है कि हम भी इन पर काम करें, राइट? अब आप देखिए कि जो कम्युनिकेशन का जो पूरा का पूरा चैनल है वो क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसके व्यावहारिक पक्ष पर जाएंगे कि हमें किन किन के बारे में काम करना होगा। थोड़ा सा मैं इसकी एक संरचनात्मक एक ढांचा आपको बता देता हूं। देखिए, मैं बोलने वाला हूं, मेरे ऑडियो को अभी आप सुन रहे हैं, तो मैं बोलने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी कि मैं सोर्स हूं, जहां से ये चीज निकल रही है, मैं बोल रहा हूं तो मैं सोर्स हो गया, ठीक है? आप उसे सुन रहे हैं तो आप किसके जरिए सुन रहे हैं? आप लैपटॉप पर सुन रहे होंगे, आप अपने स्मार्टफोन पर सुन रहे होंगे, मोबाइल पर, जिस पर भी आप सुन रहे होंगे, जिस यंत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं वो चैनल हो गया, वो माध्यम हो गया, चैनल का मतलब मीडियम हो गया। अगर आप आमने सामने मुझे सुन रहे होते तो इंटरपर्सनल मीडियम हो जाता कि हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं तो मेरी बात आप तक हवा के तरंगों के जरिए पहुंच रही है ना, हम टीवी के जरिए भी सुनते हैं, हम अखबार और किताबों के जरिए पढ़ते हैं, तो ये सब के सब चैनल से है ना, मीडियम से, जिनके माध्यम से मेरी कही हुई बात या आपकी कही हुई बात दूसरे तक पहुंचती है। आप सुन रहे हैं, तीसरे जो व्यक्ति है वो सुनने वाला है, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? सीधी सी बात है कि आप रिसीवर हो गए, यानी कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसे आप रिसीव कर रहे हैं, राइट? उसे आप प्राप्त कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन अंग इसके होते हैं, सोर्स, मीडियम और रिसीवर, राइट? अब मुश्किल ये होती है पूरे के पूरे कम्युनिकेशन स्किल में कि इन तीनों में बिल्कुल एकदम परफेक्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, परफेक्ट वेवलेंथ, वो उतना आसान नहीं होता। देखिए, परफेक्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये परफेक्ट वेवलेंथ कैसे हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा है और मैं अपने उन विचारों को शब्दों में ढालकर आवाज के माध्यम से आप तक भेज रहा हूं, मेरे मुंह से तो आवाज ही निकल रही है ना, उसको एक मशीन रिकॉर्ड कर रही है, राइट? तो मैं जो हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जो मेरी आवाज निकल रही है, जिसमें मेरे विचार हैं, याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि मैं जो मेरे विचार हैं उनको ज्यों का त्यों बोल पा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे बैक ऑफ द माइंड और पता नहीं कितनी सारी चीजें चल रही आगे की पीछे की, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी बात है कि मैं बोल रहा हूं अब मुझे नहीं मालूम है कि इसे कौन सुनेगा, इसे 15 साल का नौजवान भी सुन सकता है, जैसे कि मुझे सूचना मिली है आप सब 20-25 साल के जो नौजवान हैं वो सुनते हैं, और मुझे तो यहां तक सूचना मिली है कि 65-70 साल के घर में जो पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, माताएं हैं, वृद्ध हैं, वो सब उनमें से काफी लोग सुनते हैं। इनमें से बहुत से लोग शिक्षित हैं, बहुत से लोग शिक्षित नहीं हैं, बहुत से लोगों के पास जीवन का अनुभव है, कुछ के पास जीवन का अनुभव है ही नहीं, कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कुछ मिडिल लेवल शहर के हैं, कुछ महानगरों के हैं, कुछ अंग्रेजी जानने वाले हैं, कुछ फिलोसोफर हैं, मतलब अब सुनने वाले इतने सारे लोग हैं, तो अब मेरे दिमाग में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। और ये जितनों के लिए बोल रहा हूं उन सबके फिर अपने अपने दिमाग हैं, अपने अपनी सोच है और अपनी अपनी समझ है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। अब आप देखिए कि मैं भी जो बोलना चाह रहा हूं मैं वही नहीं बोल पा रहा हूं। जब आप बोलते हैं कभी इस तरह से कोशिश करके देखें तो दिमाग में विचारों की इतनी धक्का मुक्की होती है, वो आपस में ही एक दूसरे को धकियाते रहते हैं इस बात के लिए कि नहीं मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं पहले जाऊंगा। पहले तो आपको इन सबको संभालना पड़ता है कि भैया ठीक है सबकी बारी आएगी, और पता लगा कि बहुत अच्छों की बारी नहीं आ पाई, वो निकलने से रह गए और दूसरे आगे निकल गए, दूसरों को मैंने बोल दिया, तो ये संकट तो चलता है और इतने में टाइम खत्म हो गया। तो ये बोलने वाले का संकट है। अब सुनने वाले का संकट देखिए, वो जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, वो अपने अपने ढंग से समझ रहा है, अपनी जरूरत के हिसाब से समझ रहा है, अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से समझ रहा है, क्योंकि भाषा सबकी अलग अलग है, यहां तक कि जो शब्दों के अर्थ निकलते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। आप देखिए, मैं कहूं मोटा भाई, मेरा भाई बहुत मोटा था, मेरा मोटा भाई था, तो मोटा भाई का मतलब हो जाएगा अच्छा तगड़ा भाई, और अगर गुजराती सुनेंगे तो कहेंगे बड़ा भाई, तो अब इसको क्या कर लीजिएगा आप। तो ये सारे संकट भी होते हैं। गुजराती भाषा में मोटा भाई का मतलब है कि बड़ा भाई। मोटा असामी का मतलब हो जाता है कि बहुत धनी व्यक्ति, ये बहुत मोटा असामी है। देखिए व्यापारी लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत ही मोटा असामी है यार, इसका मतलब है कि बहुत धनी व्यक्ति है, और वैसे मोटा का मतलब होगा कि कोई फूला हुआ अच्छा। अब ये सब अलग अलग अर्थ भी देते हैं। कितने सारे संकट हैं, ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अब आप इनका करेंगे क्या? क्योंकि जब आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, फिर लगेगा आपको कि नहीं बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना बंद करो क्योंकि मेरे बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आनंद उनके जो शिष्य थे, चचेरे भाई भी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु आप बोलिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बुद्ध नहीं बोल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला, और जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है पहली बात तो उसको बोलकर बताया ही नहीं जा सकता, और अगर मैं बोल करके बता भी दूं तो उसको उस तरह से समझा नहीं जा सकता। तो कहने का उनका मतलब यही था कि हमारी सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, उस अलग अलग वेवलेंथ में कम्युनिकेट कैसे किया जाए। आप आखिर में रेडियो ट्रांजिस्टर, आप जब टीवी चैनल्स लगाते हैं तो करते क्या है, वेवलेंथ ही तो फिक्स करते हैं ना। जिस वेवलेंथ को आप चैनल बदल देते हैं, लगा देते हैं, तो उसी वेवलेंथ की वेव्स आकर के आपको अपनी आवाज सुनाने लगती है, अपनी तस्वीरें दिखाने लगती हैं। अब यहां क्या किया जाए, यहां तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप मुझे सुनना चाहें या मैं आपको सुनना चाहूं तो वो चैनल लगा दिया जाए, एक ही चैनल है। अब आप उससे जो भी सुन लीजिए, जो भी समझ लीजिए, तो ये कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मित्रों, अब देखिए वक्त हो चुका है, थोड़ा सा ज्यादा ही हो चुका है, आज यह विषय हमारा पूरा नहीं हो सकता, थोड़ी सी इस पर हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे, तो मैं आप लोगों से एक दिन की मोहलत और चाहूंगा। तो मित्रों, अब शेष बातें हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।